مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ موضوع ہمارا ہے کشمیر میں، یعنی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی بات ہوگی، وہاں پر انفارمیشن پر عائد پابندیاں اور اس پر کیا رد عمل ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں۔ اس کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے کچھ ماہرین کو۔ یہاں بوسٹن سے ہمارے ساتھ بینا سرور صاحبہ ہیں، جو کہ بہت ایکٹیو رہی ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کی کوششوں میں، اور اس کے علاوہ وہ ظاہر استاد ہیں، ان کا ایک گہرا تعلق ہے جمہوری اصولوں سے اور انسانی حقوق سے۔ تو بینا سرور بوسٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بنگلور سے ہمارے ساتھ ہیں لکشمی مورتی صاحبہ، جو کہ جرنلسٹ ہیں اور جو ایک ممبر ہیں نیٹورک آف ویمن ان میڈیا کی، اس کے علاوہ کو ایڈیٹر ہیں فری اسپیچ کلیکٹیو کی۔ تو خاص بات یہ ہے کہ لکشمی صاحبہ نے ابھی ابھی دورہ ختم کیا ہے کشمیر کا، اور وہاں اس کے بارے میں ایک طویل مضمون بھی شائع ہوا ہے۔ ہم نے اس میں خاص طور پہ یہ بات دیکھی کہ انہوں نے بہت سارے نام اس میں نہیں دیے ہیں جن لوگوں سے انہوں نے بات کی، اور ظاہر ہے یہ قابل فہم بات ہے کیونکہ یہاں واشنگٹن سے بھی کئی دفعہ ہم ان ناموں کو نہیں دیتے جس میں ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے سیکیورٹی کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں، لکشمی صاحبہ اور بینا صاحبہ۔ لیکن پہلے اس سے کہ ہم بات چیت شروع کریں، ہم ایک رپورٹ سنتے ہیں جو نئی دہلی سے ہمیں بھیجی ہے ہمارے نامہ نگار سہیل انجم نے، اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔
انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نقل و حمل اور مواصلات پر پابندی کے ایک ماہ مکمل ہونے پر ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اس نے 5 ستمبر کو ایک عالمی مہم کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے کشمیر کو بولنے دو۔ مذکورہ تنظیم کے بھارت کے سربراہ آکار پٹیل نے کہا کہ کشمیر میں بلیک آؤٹ کو ایک ماہ ہو گیا اور بھارتی حکومت اسے مزید آگے نہیں بڑھا سکتی کیونکہ اس کا کشمیری عوام اور ان کی جذباتی و ذہنی صحت پر انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے۔ صحت عامہ اور بنیادی ضرورتوں اور ہنگامی خدمات تک رسائی بھی اس سے انتہائی متاثر ہے۔ کشمیر میں لاک ڈاؤن کا معاملہ بھارتی سپریم کورٹ میں زیر التواء ہے۔ عدالت نے دفعہ 370 کو ختم کرنے کے خلاف داخل متعدد عذرداریوں پر حکومت کو نوٹس جاری کیا ہوا ہے۔ 5 ججوں کا ایک آئینی بینچ اکتوبر میں ان عذرداریوں پر سماعت کرے گا۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما منیش تیواری نے یہاں ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ کشمیر میں ایک ماہ سے ناکہ بندی جاری ہے۔
کشمیر از اے والکینو وچ از ویٹنگ ٹو ایکسپلوڈ۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک آتش فشاں بن گیا ہے جو پھٹا چاہتا ہے۔ حکومت کے پاس جبر، دھمکی اور گرفتاری کے علاوہ کوئی دوسری پالیسی نہیں ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ وہ انسانی ہاتھوں کی لائی ہوئی اس تباہی پر کیسے قابو پائے۔ ان کے بقول کشمیر میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی ہے اور شہریوں کے حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ دنی اثنا وزیراعظم نریندر مودی نے روس کے شہر ولادی وستوک میں 5ویں ایسٹرن اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر اپنے ملیشیائی ہم منصب مہاتیر محمد سے ملاقات کی اور جموں و کشمیر سے دفعہ 370 کے خاتمے کے اسباب پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ملیشیا میں قیام پذیر بھارت کے متنازعہ مبلغ ذاکر نائک کی حوالگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کی اطلاع سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دی۔
ذاکر نائک کی بات ہے، جی ہاں، پردھان منتری نے اس بات کو اٹھائی ہے اور ہم دونوں پکش نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے ادھیکاری اس پہ سمپرک بنائے رکھیں گے اور ہمارے لیے یہ مہتوپورن وشے ہے۔
یاد رہے کہ ذاکر نائک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے الزام میں بھارت میں مطلوب ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی ثنا التجا مفتی کو اپنی والدہ سے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ اس وقت چنئی میں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تو آپ دونوں نے رپورٹ سنی، اور بینا آپ سے تو میں ظاہر بات کروں گی کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ امن کی آشا جیسے پروگراموں میں شامل رہ کے اور بہت سارے بھارت اور امریکہ کے لیے امن کی کوششوں میں حصہ لینے کے بعد آپ کو اس پیش رفت پر بہت مایوسی ہوگی، لیکن پہلے میں لکشمی صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پر، یعنی کشمیر پہ جو انفارمیشن باہر آنے پر پابندی ہے، تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ لکشمی صاحبہ، अंजुम, उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही या मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही? माफ़ कीजिएगा लक्ष्मी साहब, आपकी आवाज़ हमें आ नहीं रही थी, अगर आप शुरू से दोबारा।
हेलो, अभी आ रही है
जी? जी
आवाज?
अब बिल्कुल आ रही है।
हाँ नहीं तो शुक्रिया ये सवाल के लिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमने क्या देखा, इससे ज्यादा ये प्रश्न है कि हमने क्या सुना। और क्योंकि कश्मीर में जाने से हमने ये सुना जो बाहर कश्मीर के सुनाई नहीं दे रहा है, एंड वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर की आवाजें बाहर नहीं आ रही हैं इस ब्लैकआउट के कारण, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के कारण, जो अनप्रेसिडेंटेड है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनेट भी बंद है, फोन भी बंद है, लैंडलाइंस भी बंद है, पोस्टल सर्विस भी बंद है, सब कुछ बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, तो आना जाना मुश्किल है, लोगों से फोन करना मुश्किल है, रिस्ट्रिक्शंस हैं काफी सारे एरियाज में श्रीनगर के और बाहर भी, और सिक्योरिटी फोर्सेस सब तरफ फैले हुए हैं, और लोगों में खौफ सा, मतलब बहुत एक माहौल खौफ का माहौल है, ये हमने देखा मेनली। और हम ज्यादातर पत्रकारों से मिले, जर्नलिस्ट एडिटर्स कॉरेस्पोंडेंट से मिले, जिनका हाल बहुत ही बुरा है, क्योंकि उनका जो पेशा है, उनका जो ड्यूटी है, वो कर नहीं पा रहे हैं। मतलब स्टोरी बताना, अपने लोगों की स्टोरी बताना, वो नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त।
तो इसमें दो तरह की तश्वीश मौजूद है, एक तो ये कि जो लोग बाहर हैं कश्मीर से, उनके जो अज़ीज़ कश्मीर के अंदर हैं, उन्हें ये एक तश्वीश है कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह उनकी रसाई है ज़िंदगी की, रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों तक। दूसरी तश्वीश ये भी है कि जब इस तरह आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपके मज़मून में भी कि तमाम अहम लीडर इस वक्त अंदर हैं, नज़रबंद हैं अपने घरों में, तो उससे ये भी अंदाज़ा होता है कि इसका कोई, यानी इनडेफिनेट है ये, क्योंकि ये पता नहीं, ये तो एक तवील अरसे से 70 साल से एक जारी है, एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है अपनी जगह। तो इसमें आपको सबसे बड़ी तश्वीश क्या नज़र आई दोनों लोगों में, एक तो वहाँ के सहाफ़ियों में और दूसरे आम लोगों में?
असल में पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, नेताएं हैं, वो सब बंद हैं, उनके क्या कहना है किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि एक्सेस बिल्कुल ही बंद किया गया है, और वो ऊपर से लेके नीचे तक सारे जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, सभी लीडर्स को बंद किया गया है, स्टूडेंट लीडर्स, लॉयर्स, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया था पहले ही दौर में, शायद 5-6 तारीख को अरेस्ट किया गया। तो सारे जो मोबिलाइजेशन का जो पॉसिबिलिटी है वो बंद किया गया है, और आम लोगों में ये एक, मतलब उनको कुछ इंफॉर्मेशन, जब जानकारी नहीं आ रही है किसी भी इससे, तो रूमर्स बहुत बढ़ गए हैं
जी।
जब इंटरनेट बंद किया गया था 4 तारीख को, उससे पहले ही बहुत ट्रूप्स आने लगे, पहले ही कश्मीर तो दुनिया के सबसे ज्यादा ही मिलिट्राइज रीजन कहा जाता है, और ये 1-2 अगस्त से लेकर के बहुत ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट होने लगा, तभी लोगों में कुछ मतलब अफवाहें भी फैलाने लगे, और गवर्नर साहब बताएं कि कुछ डरने का मतलब कुछ है नहीं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, सब ठीक है, और उसके एक दिन बाद ऐसा मतलब बड़ा एक स्टेप लिया गया
जी।
तो लोगों में एक तो कॉन्फिडेंस इंडियन स्टेट से खत्म ही हो चुका है, जो थोड़ा बहुत बच गया था, और जो लीडर्स बंद हैं मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल, मतलब जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो सब बंद है, और जो उनका कहना था कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन स्टेट से हमें ट्रस्ट रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, उनकी बात तो मतलब अब एकदम ठप हो गया है, तो कोई मतलब कैसे कोई इसमें विश्वास रखे। और ये जो लैक ऑफ फेथ है, वो मतलब ग्राउंड पे बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलता है
जी। मैं बीना सरवर साहबा हमारे साथ हैं मौजूद दोबारा, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। बीना, मैं आपसे ही पूछूंगी कि जैसे कि अभी बात हो रही थी कि एक फेथ ख़त्म हो गया, वो जो थोड़ा बहुत इंडियन गवर्नमेंट में कश्मीर के लोगों को था। मसलन एक नौजवान हैं शाह फैसल, जिन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान टॉप पोजिशन से पास किया था, और मैंने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया था एक दूसरे प्रोग्राम के लिए। वो उन लोगों में से थे जो कि इंडिया के आइन पर भी बात कर रहे थे, उस पर यकीन भी रखते थे, उन्हें ये भी ख्याल था कि इस आइन के अंदर रहते हुए, यानी इस आइन के अंदर रहते हुए नहीं बल्कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लोगों की सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर वो रोज़मर्रा की चीज़ों में हिस्सा लें, इम्तहान में हिस्सा लें और इलेक्शन में। लेकिन उनको एयरपोर्ट से रोक दिया गया, वो बाहर जाने वाले थे, और उन्हें वापस भेज दिया गया। तो अब एक ऐसी सूरत हाल में जबकि इन्फॉर्मेशन तो कोई बाहर आ नहीं रही और जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं, आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन के क्याम का?
शहनाज, आपने बहुत अहम नुक्ते उठाए हैं और इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान और इंडिया जो है उसको एक रियल एस्टेट का टुकड़ा ना समझें कि ये जमीन का है, कि ये जमीन है और ये हमारी है। इसमें सबसे अहम जो असासा है वो कश्मीरी लोग हैं, और
दुरुस्त
कश्मीरी लोग हर मजहब के हर हर सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले, सिर्फ मुसलमान उसमें नहीं है, वहां पे सिख, हिंदू, ईसाई, बुद्धिस्ट, बहुत और भी कौमें मौजूद हैं, मजहब हैं। तो एक तो ये बात मैं कहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है एक तरह से इसको एक मजहबी वो कर दिया कि पाकिस्तान मुसलमान है और इंडिया हिंदू है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी बेतहाशा हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जो है मजहब के लोग, कलाश और बहुत से लोग रहते हैं,
जी।
और इंडिया में भी। और जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में अब एक तरह से इंक्लूसिविटी बढ़ने लगी थी जब से हमारे यहाँ आमरियत खत्म हुई, मिलिट्री डिक्टेटरशिप खत्म हुई, जमहूरियत वापस आई। तो ये जो आपने बात की कि जमहूरियत सिलसिले में रखते हुए, इस सिलसिले को जारी रखते हुए, तो उसके ये फायदे होते हैं कि जब जमहूरी सिलसिला होता है तो उसमें इंक्लूसिविटी बढ़ती है, लोगों
जी
के का एंगेजमेंट बढ़ता है। और हम इंडिया को देखते थे कि ये एक चीज है जिसकी तरफ हम देखते थे कि यहाँ पे ऐसा है और इस
जी
तरह
हाँ
से हमारा भी हो सके। अब वहां पे इतना बड़ा आमरियत का कदम उठाया गया है आइन में रहते हुए, वो लीगली उन्होंने किया है, लेकिन मॉरली कितना वो गलत स्टेप लिया गया है। तो इसकी इसकी वजह से जाहिर है ताल्लुकात दोनों मुल्कों के खराब हुए हैं ऑलरेडी, और मजीद खराब मुझे लगता है कि होंगे। हालांकि पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा थोड़ी बहुत एक जमहूरी वो बढ़ रहा है, और करतारपुर साहब का कॉरिडोर भी बढ़ रहा है, बन रहा है, और उस तरह के टॉक्स भी हो रहे हैं, एयर स्पेस बंद नहीं की वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल है इस वक्त काफी कदम नजर आ रहे हैं, एग्जाम नजर आ रहे हैं जो कि अमन की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन आयरोनिकली इंडिया की तरफ से ऐसा नहीं है। और एक बात इसमें कहना जरूरी है वो ये है कि अगर आप देखें पूरी हिस्ट्री में हमारा, तो जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया तो इंडिया ने ठुकराया, जब इंडिया ने हाथ बढ़ाया तो पाकिस्तान ने ठुकराया। तो इस हमाम में दोनों नंगे हैं और कोई बेहतर दूसरे से नहीं है इस वक्त। हाँ, पाकिस्तान बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जिसमें जिसका लक्ष्मी हिस्सा है, जिनसे आपने अभी बात की, मेरी बहुत पुरानी जानने वाली हैं, और इस तरह के इंडिया में बहुत से दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन हमें इसमें एक और जो नुक्ता है वो ये है मीडिया का, मीडिया के आपने जिक्र किया, लक्ष्मी ने जाके वहां पे जो बात की लोगों से और जो उन्होंने रिपोर्ट इतनी अहम निकाली है अभी, तो मीडिया लेकिन भारत में, इंडिया में इस वक्त आजाद उस तरह से नहीं है। आजादी है लेकिन मीडिया इन चीजों को नहीं उठा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि सिर्फ लोग जंग चाहते हैं और बहुत खुशी का इजहार है कि कश्मीर के साथ ही हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऐसा नहीं है। तो मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही अहम है, स्पेशली आजकल जबकि सोशल मीडिया के जरिए इतना इतनी डिसइंफॉर्मेशन भी हो फैलती है और सही खबरें भी निकलती हैं। तो ये एक बहुत हम लोग एक खड़े हैं एक जगह पे जहां से हम या इस तरफ गिर सकते हैं या उस तरफ, और मेरा मतलब कि आगे की तरफ बढ़ सकते हैं या पीछे की तरफ। और
तो मैं
मुझे
जी
जी
जी फरमाइए।
जस्ट टू फिनिश, आप सॉरी मैं लंबी बात कर दी, लेकिन ये
नहीं 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 आप बोलिए।
मुझे उम्मीद ये है कि हमारे जो दोस्त इंडिया में हैं लक्ष्मी जैसे और बहुत सारे और जो हैं विजयन जिनसे आपने लास्ट टाइम बात की थी और इतने सारे लोग हैं जो कि कर रहे हैं और लगे हुए हैं और पाकिस्तान में भी हम लोग पाकिस्तान में जो लोग हैं ये नहीं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप पाकिस्तान में सेंसरशिप एक और किस्म की इस वक्त है कोई कई चीजें हैं जिनकी आप बात ही नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि जो हम लोग तूतू में करने लगते हैं ना कि हम तुमसे बेहतर हैं तो उसमें उससे फिर मामला आगे नहीं बढ़ता है
और वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हुई कि असल चीज तो कश्मीर के अवाम है मतलब बात कश्मीर के अवाम की और उसी पे हम आज बात करना चाह रहे हैं। मैं लक्ष्मी जी आपसे यहाँ आगे पूछूंगी कि इस वक्त बात हुई कि जो प्रोग्रेसिव तबका है वहाँ पे जो लिबरल हैं तो उनको किस वही आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ पर और बहुत सारे ख़ासतौर पे जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने बहुत से मुजाहरे किए। सबसे बड़ा एहतजाज उन्हीं का था जो दिल्ली में हुआ। तो आपसे जब कुछ देर पहले मेरी बात हुई तो आपने कहा कि इस वक्त उनके ऊपर भी जो है एक अताव है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सूरत हाल हमें इंडिया के अंदर यानी इंडिया में नज़र आती है या कश्मीर में नज़र आती है गिरफ्तारियों की?
असल में कश्मीर में इस वक्त जो गिरफ्तारियां हैं वो मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स के हैं, यंग बच्चों के हैं और वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने भी ऑफिशियल से पूछा कि क्या नंबर क्या है, कितने लोग बंद हैं और क्योंकि सुनने में आ रहा है कि श्रीनगर के जेल में जगह ही नहीं है, आगरा भेज रहे हैं, बरेली, रोहतक, झज्जर, राजस्थान, बहुत मतलब जहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है और हमने ये भी सुना कि इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि सड़ने दो इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे माइनर्स भी हमने सुना कि गिरफ्तार है लेकिन इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं। तो इसको मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, न्यूज़पेपर्स में ऑथेंटिक जो खबरें हैं वो वेरिफिकेशन के लिए उनका बहुत ही ऑब्स्टिकल्स हैं तो इसलिए वेरीफाइड न्यूज नहीं आ रहा है। तो रूमर्स बढ़ रहे हैं कि 40,000 गिरफ्तार हैं, 50,000 गिरफ्तार हैं, अभी तक किसी को भी नंबर्स एग्जैक्टली मालूम नहीं है। हमने भी स्पोक्समैन से पूछा था रोहित कंसल जी तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिस्ट्रिक्ट से कंपाइलेशन अभी आया नहीं है, हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है। तो गवर्नमेंट की ओर से एग्जैक्ट फिगर्स अरेस्ट के आ नहीं रहे हैं, पैलेट इंजरीज वगैरह इसके भी गवर्नमेंट की ओर से नहीं आ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हम भी थे उन्होंने सर्जरीज और जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं अस्पतालों के उन्होंने वो प्रेजेंट किए। तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा बाद में कि इनमें से कितने पैलेट इंजरीज हैं तो उन्होंने कहा कि हमें ये ब्रेकडाउन नहीं है, सिर्फ सर्जरीज के हैं। तो उसका भी जवाब 5 अगस्त से पूछा जा रहा है लेकिन उसका जवाब अभी तक आया नहीं है
जी।
तो कई कई ऐसे मामले हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं जिस पे कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में रूमर्स का बहुत ही ज्यादा रोल फिर हो जाता है और तभी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इसलिए व्हाट्सएप और इंटरनेट और ये सब अभी और कुछ टाइम नहीं चालू करने वाले क्योंकि इससे रूमर्स फैल रहे हैं। लेकिन रूमर इसलिए फैल रहे हैं क्योंकि कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं सामने आ रहा
जी। हमने बड़ी कोशिश की क्योंकि इस प्रोग्राम में ज़रूरी था कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई या नुमाइंदा या उनका कोई तर्जुमान शामिल होता, बदकिस्मती से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन मेरे पास एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है जो विजय सोनकर शास्त्री साहब की है, वो इसी प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कुछ बात की थी कश्मीर में जो सूरत हाल है उस पर, तो लीजिए सुनते हैं।
अभी अभी जो बोले हैं कि कश्मीर में वहाँ जिंदगियाँ खराब, लाखों जिंदगियाँ खराब हो रही हैं, ये लोग जो लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे ख्याल से वर्तमान कश्मीर के बारे में उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। वहाँ जिस तरह से नॉर्मलिटी आ रही है, टेररिस्ट सिमट चुके हैं और लगभग वहाँ पर 800 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है और वहाँ पर नॉर्मल स्थिति हो रही है, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ के लड़के IAS IPS में जा रहे हैं, वहाँ रोजगार की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और वहाँ के लोग खुश हैं। अब इस बात को शायद लोग नहीं जानते वही ये कह रहे हैं कि वहाँ लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में मुश्किल में है, वहाँ कुछ लोगों की जिंदगियां खतरे में मुश्किल में है जो लोग टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं या टेररिज्म को मानते हैं, और जो वो लोगों की जिंदगियां खतरे में है जो पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंट साबित होते हैं, वो उनकी जिंदगियां जरूर खतरे में है और उनकी जिंदगियां खतरे में रहेंगी ही जब तक कि समस्या का समाधान।
तो ये आवाज़ थी विजय सोनकर शास्त्री साहब की जो कि बीजेपी के कौमी तर्जुमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मुक्तदिर खान साहब भी हैं, बीना सरवर और हमारी लक्ष्मी मूर्ति के अलावा। तो डॉक्टर साहब खुश आमदेद प्रोग्राम में। मैं आपसे पूछ जाऊँगी, बात कर रहे हैं हम कश्मीर में इस वक्त जो एक ब्लॉक किया हुआ इंफॉर्मेशन को, उसके क्या असरात हैं बैन अलाक़वामी तौर पर इंडिया के इमेज पर, ख़ास तौर पर जिसका एक सेकुलर इमेज है और उसमें वहाँ एक जमहूरियत का तसलसल है। कुछ देर पहले बीना ने इसीलिए कहा कि इसीलिए हम ज़्यादा तवक्को के साथ इंडिया की तरफ देखते थे क्योंकि वहाँ फ़ौजी हुकूमत ने बरसर इक्तदार नहीं आई, तो वहाँ ये देखना कि किसी एक इलाके को बिल्कुल बंद कर दिया जाए बहुत ही अफसोस की बात है। मैं एक उसके साथ साथ एक और भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि असम में अभी हाल ही में जिन 40 लाख लोगों की शहरियत मंसूख की गई उसमें 39 लाख जो थे वो मुसलमान थे। तो क्या ये दोनों वाक़यात इस वक्त कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको एक मुनज़्ज़म कोशिश नज़र आती है भारत में मुसलमानों के खिलाफ?
देखिए इसमें तो आपके एक सवाल में कई सवाल है। पहला तो सवाल ये है कि 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक रथ यात्रा निकाली थी, उस जमाने से तो पब्लिक में हिंदुत्व जो मूवमेंट है, ये कोशिश के इंडिया को एक हिंदू मुल्क बनाया जाए, बेसिकली जिस तरह से इस्लामिस्ट इस्लामिक स्टेट मांगते हैं, ये हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र मांगते हैं। तो उस जमाने से दो पिलर्स रहे हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी की, एक बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पे राम मंदिर बनाना, दूसरा कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 को खत्म करना। तो एक किस्म से हिंदुत्व मूवमेंट ने दोनों पिलर्स के एडवांसमेंट में आगे बढ़ गए। तीसरी चीज ये है कि ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था वो एक खटकता था, प्लस पाकिस्तान के साथ जो इंडिया में पिछले कई सालों से हेट्रेड ये जंगें वगैरह, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और गुस्सा है वो पाकिस्तान पे तो नहीं निकाला जा रहा है, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को इन्वेड नहीं किया, वो सारा इंडियन मुसलमानों पे निकलता है। तीसरी चीज ये है कि मतलब एक कल्चर बन गया है पिछले 5-10 साल में जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में कि मुसलमानों की शिनाख्त को खत्म करना। मिसाल के तौर पे ये छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली का फिरोजशाह कोटला, उसका अब नाम बदल दिया जा रहा है और एक फॉर्मर बीजेपी लीडर जो क्रिकेट के कोई ताल्लुक नहीं है उनके नाम पे रखा जा रहा है। तो इस तरह से जो इस्लामिक हेरिटेज है और मुस्लिम आइडेंटिटी है इंडिया की वो खत्म की जा रही है। व्हाट्सएप पे अफवाह फैलती है कि ताजमहल का भी नाम बदल दिया जाएगा या उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये एक जगह बात है कि कॉन्सेंट्रेटेड होके असम में भी आ गई थी, लेकिन असम का जो रिजल्ट है काफी दिलचस्प है। वहां पे जो कई लोग जिनको नॉन सिटीजन करार दिया गया वो बंगाली हिंदू है, तो अब बीजेपी के लिए एक मसला खड़ा हो गया कि वो एक फॉर्मली डबल स्टैंडर्ड अपनाना चाहते हैं कि जो मुसलमान बांग्लादेश से भागकर आए हैं इंडिया में 1971 से पहले उनको वो इन्वेडर्स या इलीगल करार करना चाह रहे हैं, और जो हिंदू भागकर आए हैं बांग्लादेश से 71 के बाद उनको वो रेफ्यूजीज बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से एक किस्म से एक मुल्क में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। और ये कश्मीर तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती की है, यूं कहिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैक्सिकन वॉल बनाकर उसका प्रॉमिस किया था कि मैं वॉल बनाऊंगा मेक्सिको पे करेगा, उस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए भी कश्मीर का एक चीज बन गई है। और इंडिया की इकोनॉमी इतनी बुरी हो गई है, मुसलसिल उसकी ग्रोथ रेट कम होते जा रही है, और इस वजह से भी सिम्बॉलिक एक्शंस और कल्चरल चीजों पे तवज्जो दी जा रही है। और मुझे लगता कि ये जो मसला है ये इससे बुरा होने वाला है, ये बेसिकली एक नया वेस्ट बैंक जैसा फलस्तीन जैसा सिचुएशन बनने वाला है कश्मीर में, जहाँ पे इंडिया की फौजें ऑक्यूपाई करेंगी और हिंदुओं को एंकरेज किया जाएगा कि वो जाके कश्मीर में सेटल हों, वहाँ पे जायदादें खरीदें, वहाँ पे सेटलमेंट्स बनेंगे, हिंदू सेटलमेंट्स, ताकि मुस्लिम जो मेजॉरिटी है कश्मीर वैली में उसको ख़त्म किया जाएगा। तो बेसिकली ये ना तो कश्मीरियों के लिए अच्छा है, ना इंडिया के लिए अच्छा है। पिछले एक महीने से मुसलसिल इंडिया के खिलाफ नेगेटिव कवरेज चल रहा है इंटरनेशनल मीडिया से, जिसके वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, टूरिस्ट वगैरह भी इंडिया जाना बंद कर देंगे। तो जनरली ये हिंदुत्व सपोर्टर्स के लिए तो यूँ कहिए कि उनके दिलों को खुशी पहुँच रही है कि मुसलमानों पर अजियत हो रही है, लेकिन इन जनरल ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छी है, और कश्मीरियों के लिए तो दिस इज गोइंग टू बी टेरेबल आइंदा 5-10 साल तक।
तो मैं लक्ष्मी मूर्ति साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि ज़ाहिर है कि जैसे बार बार ये बात हुई कि सिर्फ कश्मीर में मुसलमान नहीं रहते, कश्मीर में जम्मू में अक्सरियत हिंदुओं की है, हिंदू पंडितों की है, जो कि कश्मीर वादी से भागकर भी बहुत से लोग वहाँ आबाद हुए हैं जाके, तो कश्मीरी पंडित खुद भी इस खसूसी हैसियत को सपोर्ट करते थे एक अरसे तक, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पर हिंदुओं को बसा दिया जाता है दूसरे इलाकों से ले जाके, तो उससे उनकी इकोनॉमी भी नुकसान पहुँचेगा उसको। तो आपका क्या वहाँ के सफ़र के बाद तासुर है कि क्या पंडित भी परेशान है इस खसूसी हैसियत को ख़त्म किए जाने पर, या सिर्फ मुसलमानों का मसला है?
नहीं, जो कश्मीरी पंडित हैं जो श्रीनगर या कहीं भी रहते हैं उनको भी मतलब वो ही, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का वो मामला नहीं है, वो कश्मीरी जो कहते हैं एक कश्मीरी जो शनाख्त होता है, जो आइडेंटिटी है कश्मीरियों का वो कॉमन है, वो सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम को नहीं है, लेकिन कुछ आई थिंक 20 साल से ये पोलिटिसाइज बहुत ज्यादा किया गया है और एक हिंदू मुस्लिम मामला बन गया है
जी।
जो लोगों के लेवल पे जहाँ भी हम गए थे सब कह रहे थे, उनके जो बुजुर्ग लोग हैं घर में वो सब अभी भी कहानियां बताते हैं कैसे उन्होंने अपने नेबर्स को जाके कहा कि मत जाइए आप, लेकिन भड़काया गया। बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो स्टोरी है वो अभी तक वो लिखी जा रही है, वो स्टोरी हिंदू पंडितों की कश्मीर से जाना, तो किस वजह से गए कैसे गए, जो लोगों के लेवल पे दुख है, बहुत बहुत दुख है कि अपने ही लोग कश्मीरी पंडित कश्मीरी हैं और हिंदू मुसलमान का जो है वो अभी एक डिवाइड जैसा बन गया, और वो काफी मुश्किल है क्योंकि वो मीडिया में भी वो डिवाइड एकदम वो हार्डन हो रहा है, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेटली जो हिंदू पंडित आइडेंटिटी रखते हैं वो एक अलग ही रियलिटी अभी पिछले 4 हफ्ते से दिखा रहे इंडियन मीडिया में, तो गुस्सा बहुत है उनके ऊपर भी, क्योंकि जैसे एम्बेडेड जर्नलिस्ट टाइप का है वो उसी मतलब टेम्पलेट में वो ऑपरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से एक्सेस उनका ज्यादा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से ज्यादा एक्सेस है, हेलीकॉप्टर से जाना वगैरह वगैरह, तो जो औरों को नहीं है ये एक्सेस, तो वो एक तरह का रियलिटी दिखा रहे हैं कश्मीर का, और बाकी का जो मेजोरिटियों का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए वो भी अनफॉर्चुनेटली पोलराइज होता जा रहा है कि कश्मीरी पंडित इस तरह का मतलब एक डिस्टॉर्टेड सा रियलिटी दिखा रहे हैं कश्मीर का।
वैसे मैं यहाँ एक बात पूछूंगी लक्ष्मी साहिबा कि एक बात कही जाती है कि बावजूद इसके कि भारत को हमेशा से फ्रीडम ऑफ प्रेस का दावा है, लेकिन भारत का प्रेस जो है उसमें कौम परस्ती के जज्बात या तो खुद ज़्यादा है या ये कि किसी जगह से उन्हें ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, क्योंकि ये चीज़ हमेशा गालिब नज़र आती है कि हुकूमत पर उस तरह की तनकीद, यानी जो बैन अल-अक़वामी मामलात हैं, मुल्की मामलात में तो खुलकर होती है लेकिन उसमें उनका हमेशा एक जज्बा जो है कौम परस्ती का वो गालिब आ जाता है। आप ऐसा समझती हैं कि ये बात है इंडियन प्रेस में या नहीं है, या ये सिर्फ कमर्शियल मामला है कि कौन सी चीज़ जो ज़्यादा बिक रही है इस वक्त वो उसको दे रहे हैं?
नहीं, कमर्शियल तो है ही क्योंकि मीडिया एक अब इंडस्ट्री बन गया है, लेकिन ये जो कम्युनलाइजेशन है वो तो काफी डीप है और जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेज भी उससे मतलब वो इम्यून नहीं है, तो वो है और ये पोलराइजेशन हर तबके में बढ़ रहा है.
दुरुस्त.
मैं मतलब एजुकेशन के सिस्टम में पोलराइजेशन हो रहा है, जर्नलिस्ट मीडिया में तो हो ही रहा है. और एक मतलब जब एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है सेंटर में और कई सारे राज्यों में, वो हर तरफ इसी तरह के आइडियोलॉजी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसी टाइप के आइडियोलॉजी को रिवॉर्ड भी मिलते हैं. तो मीडिया तो इसमें एक इनर कॉग है और जो पहले का रोल था मीडिया का, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निभा पा रहा है. एक्सेप्ट कुछ अभी जो निकले हैं अल्टरनेटिव डिजिटल साइट्स और इस तरह के मीडिया जो बहुत पॉपुलर हैं और सोशल मीडिया से काफी फैला जाता है उनके न्यूज. लेकिन जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अभी आ रहा है, वो काफी अनरेगुलेटेड है और वो इस तरह का कम्युनलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं. और इसमें एक बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता है, वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है NDSA करके, और वो बॉडी काफी टूथलेस है. प्रेस काउंसिल भी वैसे आपको तो मालूम ही होगा पिछले एक दो हफ्ते से किस तरह का रोल प्रेस काउंसिल ने निभाया कश्मीर के मामले में. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ज्यादा भड़काया जा रहा है, ज्यादा मतलब पोलराइजेशन कर रहा है, वो डेफिनेटली एक कम्युनल जो कलर है वो बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें.
तो मैं यहाँ बिना आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपका मीडिया से ताल्लुक है, आप पढ़ाती हैं, तो यहाँ के जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनमें कुछ शऊर आपको नजर आता है? कुछ उनको पता है कि क्या हो रहा है सर कश्मीर में? कहीं कोई सुनाई दी आपको ये आवाज?
एक्चुअली आज जो है मेरी पहली क्लास है जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता, वो जो आ रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं ज्यादातर. तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनमें से ज्यादातर को कुछ अंदाजा होगा कि क्या हो रहा है. अनलेस उनमें से कुछ जो हैं जो बड़े बड़े न्यूज मीडिया जो हैं, जो कि जिन्होंने लिया है इस इशू को, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, ऐसे बड़े मीडिया के जो हैं अखबार वगैरह, उसमें यहाँ पे आता रहा है. मेरा ख्याल आम पब्लिक में इतना नहीं है, लेकिन जिन लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, लोगों से मैं यहाँ मिलती हूँ और कश्मीर का जिक्र आता है, तो अक्सर लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो अफसोस का होता है कि उनको ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है. ये जो बात है ये बड़ी वाजे और बहुत सामने है. लेकिन एक और बात ये भी है कि हम लोग जो इस डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं, हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, मेरा ख्याल है जो मुझे नजर आता है. लेकिन जाहिर है बहुत से लोग हैं जिनको जो समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है. और मेरा ख्याल है कि जो लोग समझते हैं कि ठीक हो रहा है, तो उनको मालूमात की कमी है. उनके पास सिर्फ एक ही तरफ से उनको नैरेटिव मिला है और उनको पूरी एक राउंडेड उनको इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है. क्योंकि मेरा ख्याल है कोई भी अगर शख्स हो जिसको पूरी तरह पता हो कि क्या हो रहा है, कुछ अंदाजा हो कि इसका क्या है, तो उसमें मेरा ख्याल है सही और गलत का बड़ा सामने जो है बात सामने आती है.
मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, अब्दुल मुक्तदर खान साहब से, कि आपने बात की थी फ़लस्तीनी इसराइली तनाज़े की और ये कि उसी तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है. तो जिस चीज़ को इंतफादा का नाम दिया गया था, बहुत से लोग फिर कश्मीर के लिए भी उसी लफ्ज़ का उसी इस्तेमाल का इस्तेमाल करते हैं. तो मैं ये बताइए मुझे कि अब ये काफ़ी हद तक ये बात बैन अल-अक़वामी तौर पर मानी गई है कि कश्मीर में जो बदअमनी है वो वहीं की पैदा करता है, वहीं के नौजवान जो हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं. और बुरहान जो थे उनके कमांडर, उनकी मौत के बाद तो ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नौजवान इसमें आ गए. तो क्या अब भी आप यहाँ अमेरिका में हैं, इस तनाज़े को यही समझा जाता है कि ये सरहद पार से आने वाले अस्करियत पसंद हैं, जंगजू हैं, जो कश्मीर में जाके एक फसाद पैदा कर रहे हैं, या उसमें वहाँ के अपने लोग शामिल हैं इस पूरी लड़ाई में?
देखिए ये जो डिस्कशन है इसमें कई चीजें हो रही हैं. मिसाल के तौर पे जो इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी का जो रोल है, पिछले दो दिन में आपने देखा होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कहा कि कश्मीर का मसला उम्मा का मसला ना बनाएं. तो एक किस्म से जो मुस्लिम मुल्कों के नेशनलिज्म है, या तो جس طرح سے پاکستان نے چائنا کے اویگرز کو ابینڈن کر دیا، اس طرح سے عربوں نے کشمیریوں کو ابینڈن کر دیا، تو اس اور فلسطینیوں کا بھی مسئلہ ابھی مسلم ملک لیتے نہیں ہیں، تو ایک قسم سے مسلم کمیونٹیز میں گلوبلی اس طرح کے جو مسائل ہیں اس پہ اٹینشن کم ہو گئی ہے. جب کشمیر کا یہ جب آرٹیکل کو مودی نے رد کر دیا تھا تو ہم نے سینٹرل فور گلوبل پالیسی نے کشمیر پہ ایک اسپیشل ایشو بھیجا تھا، اور ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ نارمل ہمارے جو آرٹیکل جا رہے تھے یمن پہ اور عراق پر سیریا پر اسے زیادہ پڑھ رہے تھے لوگ، بوتھ امریکنز اور جو مسلم ڈائسپورا ہے، بنسبت کشمیر کے پر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تقریباً 10% کم مسلمان کشمیر کے اوپر انٹرسٹ ظاہر کر رہے تھے، حالانکہ میڈیا میں بھی کشمیر کا مسئلہ آ گیا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ دو قسم کی پبلک آڈینس ہے اس مسئلے کے لیے، ایک تو ایک جو ہندو میجورٹی ہے انڈیا میں اور دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی. انٹرنیشنل کمیونٹی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا اٹینشن سسٹین کرنا اس مسئلے پر مشکل ہے، کل کوئی اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر میڈیا کا اٹینشن اس سے ہٹ جائے گا. مثال کے طور پہ جیسا سعودی عربیہ پہ چند مہینے چلتے رہا وہ خشوگی کے اسیسینیشن کے بعد اب کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا، اب کشمیر چل رہا ہے تھوڑے دنوں کے بعد کچھ اور ہو جائے گا. البتہ جو سب سے امپورٹنٹ پبلک اوپینین ہے وہ انڈین میجورٹی کا ہے، ہندوتوا والے اور نان ہندوتوا والے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تقریباً ایک قسم سے ایک کنسنسس بن گیا ہے انڈیا میں، 70-80% کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ کشمیر کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو ایک نارمل اسٹیٹ بنا دیا گیا، حالانکہ کشمیر کا لیگل اسٹیٹس اسٹیٹ سے بھی ہٹ گیا ہے. سو دیٹ از دا سب سے اسکیری پارٹ کہ اگر انڈیا میں اتنا اسٹرانگ کنسنسس ہے ان فیور آف یہ ڈسیشن، تو اس کو ریورس کرنا یا کشمیر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے. ہاں یہ اور بات ہے.
ہیلو
جی
ڈاکٹر صاحب، شاید آپ کے فون میں کافی شور ہے. جی کسی ایک ٹیلی فون میں بہت آواز آ رہی ہے. ہاں نہیں اب ٹھیک ہے. نہیں 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 اب بالکل صحیح ہے. اچھا تو
یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انٹرنیشنل پریشر سسٹین ہوتا اور انڈیا کا اکنامک سچویشن پہ اثر اگر ہوگا تو جو ایلیٹ ہے وہ اپنی پالیسیز بدلیں گے، لیکن عوام پر یہ بسوں تک یہ جو نفرت دلوں میں پیدا کی گئی ہے وہ اتنی آسانی سے انفارچونیٹلی نہیں نکلے گی. آپ دیکھیں سارا کا سارا جو ہندو ڈائسپورا ہے امریکہ میں انڈیا کا، تقریباً 80% to 90% ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہے، مودی کو سپورٹ کرتا ہے، بی جے پی کو سپورٹ کرتا ہے. تو امریکہ میں وہ تو واشنگٹن میں جب کشمیر پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں وہ لٹرلی آ کے گنڈا گردی کر رہے ہیں، تھنک ٹینک میں جا کے گڑبڑ کر رہے ہیں، سیکیورٹی کو بلانا پڑ رہا ہے. ہم لوگ اب نیکسٹ ویک میں وی آر پلاننگ سم تھنگ آن کشمیر، تو سب سے پہلا کنسرن ہمارا سیکیورٹی کا ہے کہ شو وی پے دا پولیس، تاکہ یہ جو پرو بی جے پی لٹرلی پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر گنڈوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں. تو یہ جو جوش بڑھ گیا ہے نا ہندو نیشنلزم کا دنیا میں، یہ آگ بہت کچھ جلانے کے بعد بجھے گی.
میں ہمارے ساتھ جو اب مہمان شامل ہوئے ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب ہیں، آپ سب کی جانے پہچانے، بہت ہی معروف اسکالر ہیں، انالسٹ ہیں اور دنیا اسلام سے اور اسلامی سرگرمیوں سے یہاں امریکہ میں ان کا گہرا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت بات کر رہے تھے، ڈاکٹر عبد المقتدر خان صاحب، اور اس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ریئیکشن ہے کشمیر پر وہ دنیا اسلام کی طرف سے تو بہت ہی ٹھنڈا آیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 7 عشروں سے اگر دنیا اسلام کا مسئلہ یہ تھا ابھی، تو اس سے کشمیر کو کوئی فائدہ تو پہنچتا نظر آتا نہیں تھا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کے جو مسئلے نے جو شکل اختیار کی ہے، یعنی یہ کہ یو اے ای نے بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اسے امہ کا مسئلہ نہ بنائے، یا کسی اور مسلمان ملک نے کوئی گہرا رد عمل اس پہ شدید ظاہر نہیں کیا، تو آپ کیا فرمائیں گے اس پر؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے پچھلے سپٹمبر 11 کے بعد ایک اوور آل میرے خیال تھنکنگ تبدیل ہوئی ہے کہ کسی بھی جگہ اگر کوئی آزادی کی بات ہے یا آزادی کی کوئی اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کو زیادہ اب تسلیم نہیں کیا جاتا. एक बिल्कुल दुनिया में एक थिंकिंग ओवरऑल जो है ना चेंज हुई है। अच्छा, उसी में साथ ये है कि मुसलमानों का खून बहे तो वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, और खुद बदकिस्मती से मुसलमानों ने भी, खासतौर पर हुक्मरानों ने भी इसको एक लिहाज से गैर शौरी तौर पर कबूल कर लिया हुआ है। अच्छा, फिर अगर इंडिया की साथ ही बात हो तो वो मुआशी तौर पे इतना बड़ा गैप आ गया हुआ है, तो इस लिहाज से, और पिछले 50 साल से मसला बिल्कुल ही सर्द था, तो अब जो मेरा ख्याल है जो मौका हुआ है तो उसमें पहली बात तो ये हो रही है, दुनिया इस्लाम को तो छोड़ें, ये जो जो ये जहत है जिसको इमरान खान ने और अब और भी जगहों पे जो बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है और या उसका मसला बढ़ रहा है कि ये कोई रेगुलर डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, ये डेमोक्रेट पार्टी नहीं है जो ये बिहेव कर रही है, बल्कि ये खास नजरिए के तहत कर रहे हैं। और अभी मैंने ज्यादा नहीं सुना डॉक्टर अब्दुल मुकद्दर साहब को, वो जैसे कह रहे थे कि भाई पढ़े लिखे लोग भी बड़ी इस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये जो आइडियोलॉजी है जो है एक तरह का, उसे आप एक्सट्रीम हिंदू नेशनलिज्म कहें, हिंदू फैसिज्म कहें, तो वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और तो ये खुद बावर कराना इवन पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के लोगों को और मुसलमान लीडरशिप को, ये भी इसमें भी वक्त लगेगा। तो बात सही है आप जैसे आप फरमा रही हैं कि अगर कोई तवक्को थी, खामखा थी, तो वो तो उतनी पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये मौजू की जो ये जो नई जहत है इसको जितना भी लोग हजम करते जाएंगे तो यकीनन जो एक रद्द अमल है वो जरूर इस पे उभरेगा, इसलिए कि ये जहद बिल्कुल एक बहुत ही खौफनाक है, और अगर उसका इदराक होता जाएगा जहां जहां तो इसका जरूर रद्द अमल भी होगा और इस पे लोग सोचना शुरू भी करेंगे। और अभी भी आप देखें चंद रोज, ये जितने रोज गुजरे हैं तो कुछ ना कुछ तब्दीली, चाहे वो बहुत ही लुक वार्म किस्म की हो, OIC की भी रेजोल्यूशन आया, अब ये दोनों वज़रा खारजा सऊदी अरब और UAE के वहां पहुंचे, इनके हालांकि खासा ताल्लुक भी है, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट है, लेकिन लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें ना, दुनिया इस्लाम को क्या कहेंगे, मतलब तुर्की और ईरान ने तो और मलेशिया ने, इन्होंने तो सपोर्ट किया, ईरान ने जो सपोर्ट किया बड़ा खिलाफ तवक्को था, और तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि मैं इतना तो मायूस नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि ये इस पे एजुकेशन की जरूरत है, बल्कि मुसलमान लीडरशिप, हमें तो यहाँ बस अमेरिका में मौका मिला तो हमने जो दूसरी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है उनको जब ये बताया तो उनके लिए बहुत ही अचंभे की बात थी। अभी हमारा इतना के कुछ साथी और दो मकामी कम्युनिटी के साथी रशीदा तलेब से मिले हैं, कांग्रेस वुमेन जो है डिट्रॉयट से, तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई इल्म भी नहीं था इन चीजों के बारे में। तो ये जो पूरी डायमेंशन है कि भाई वहां एक हिंदू, एक हिटलर के जो मानने वाले हैं या उसको आइडियलाइज करने वाले वही पार्टी के लोग हैं, और अब चूंकि इकोनॉमिक उन्हें बहुत बड़ी कुव्वत भी अपने आप को समझते हैं और पार्लियामेंट्री मेजोरिटी भी बहुत बड़ी है, तो सही मानों में जो यहाँ के फाउंडिंग फादर कहते थे टिरनी ऑफ मेजोरिटी, वो उसका मुजाहरा उस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर करना चाहते हैं, तो इसका एहसास होता जाएगा तो मेरा ख्याल जरूर इसके बारे में रिएक्शन में इजाफा होगा।
मैं एक बार फिर लक्ष्मी मूर्ति साहब आपके पास आऊंगी, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इसमें एक हर एक का ये कहना है कि इस वक्त क्योंकि भारत में एक ऐसी हुकूमत है जो हिंदू कौम परस्त जमात है, तो उसके दौर में ये जब से ये हुकूमत शुरू हुई इस तरह के आसार नज़र आते रहे और बिलाखिर 2-3 ऐसे इकदाम हुए जो अपनी कॉन्क्रीट शक्ल में सामने आए, तो खुद इंडिया की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा इंतखाबात में हमने देखा कि तमाम ही जमातें बाहर हो गईं सिवाय BJP के, और कांग्रेस ने गो के खुद को बड़ा अलहदा रखा मुसलमानों के इश्यूज से, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो क्या आपको लगता है कि BJP की ये पॉपुलैरिटी इसी तरह कायम रहेगी या इसमें इजाफा होगा या कमी होगी?
नहीं, ये तो बढ़ेगा ही, और ये हमने देखा कि वो जो एक अग्रेसिव नेशनलिज्म है जो BJP प्रमोट कर रही है वो बिल्कुल इसी मतलब लाइन में जा रहा है, और ये कोई वैसे मतलब अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से इनके मैनिफेस्टो में कि वो 370 को एब्रोगेट कर रहे हैं करेंगे, और जब वो इस साल 2019 में उनको फिर से एक टर्म मिला तो जनरली किसी को एक सरप्राइज नहीं था, लेकिन जिस मैनर में उन्होंने किया वो शायद सबको एकदम से इट वॉज शॉकिंग एक्चुअली जिस तरह से ये हुआ है. बट ये जो स्टेडिली एक हिंदू नेशनलिज्म बढ़ रहा है, अग्रेसिव नेशनलिज्म बढ़ रहा है, ये हमने वो पुलवामा सुसाइड ब्लास्ट के बाद में ही देख रहे थे. ये इनके फर्स्ट टर्म के लास्ट 2-3 महीने थे और जैसे वो एक पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म वो मतलब हर तबके में हमने देखा, वो एकदम ड्रम अप किया था. तो हम बहुत ही मतलब वी वर श्योर दैट दे विल गेट अ सेकंड टर्म उसी के बल पे इन अ वे. तो ये तो बढ़ेगा ही. एंड एक जो अग्रेसिव टाइप का नेशनलिज्म है जो बीजेपी का छाप है इन अ वे, वो तो बढ़ेगा. एंड जो एक मतलब डरने वाली बात है कि ये एक कंसेंसस बना हुआ है लोगों में, एक मेजॉरिटी कंसेंसस बन रहा है और जो इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाते हैं उनको एंटी नेशनल का लेबल दिया जाता है और उनको ट्रोल किया जाता है या तो उनको मार्जिनलाइज किया जाता है या मतलब किसी भी एक्सक्यूज से उनके वॉइसेस को मतलब एकदम खामोश किया जाता है. तो ये जो एक मेनस्ट्रीम नैरेटिव है जो मीडिया को चैलेंज करना था, वो मीडिया ही इस नैरेटिव में शामिल है. इनफैक्ट कश्मीर के जर्नलिस्ट हमसे कह रहे थे कि मीडिया एक सरकार का एक अंग जैसे वो कर रहे हैं. नेशनल मीडिया जो है इट्स लाइक अ गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट, ये उनके शब्द थे कि मीडिया का रोल ही मतलब जो चैलेंज करना था, जो क्वेश्चन करना था, वो है ही नहीं अब. जब वो प्रोपेगेंडा, गवर्नमेंट की प्रोपेगेंडा एकदम स्वॉलो कर रही है और वो खुद ही प्रोपेगेंडा कर रही है, वो देयर इज नो रोल फॉर द मीडिया इज जो कंसेंसस बिल्डिंग
दुरुस्त. हम एक ज़ाहिर है सारी बात हो रही है एक ऐसी कार्रवाई पर जो बीजेपी की हुकूमत ने की और उनकी आवाज़ इसलिए शामिल नहीं है के बावजूद कोशिश की उनका कोई स्पोक्स पर्सन हमें मिल नहीं सके. एक बार फिर सुनते हैं उनकी एक साबिका रिकॉर्डिंग है विजय शास्त्री साहब की जो कौमी तर्जुमान है बीजेपी के, उससे एक थोड़ा सा इक्तिबास.
अभी हमारे जो पैनलिस्ट ने जो बातें कही है मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ.
अच्छा,
बहुत सारी बातों ने कहा है पर उन्होंने एक बात छोड़ दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो आज जो संबंध है, जो खराब संबंध है, इसका कारण क्या है और क्यों ये बात रुकी हुई है. ये लोग बाकी लोग सुनने वाले श्रोता भी हमारे क्लियर होते, क्योंकि इसलिए ये वार्ता रुकी है कि एक तरफ तो शांति की बात की जाती है और बात करने के लिए बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ टेररिज्म को बंदूकें और गोलियां भी चलती रहती हैं, लाशें भी गिरती रहती हैं. तो टेरर एंड टॉक एक साथ कैसे हो सकता है? ये हमारे देश का पॉलिसी बना है खासतौर से पाकिस्तान के संदर्भ में और ये पॉलिसी आज नहीं बनी है. ये 1972 में जब शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, तो उस समय ये तय किया गया था.
तो ये आवाज जो आपने सुनी ये शास्त्री साहब थे कौमी तर्जुमान. मैं बिना आपसे यहाँ ये कहूँगी कि मसला फिर वही है कि जब भी कश्मीर की बात हो तो मामला पाकिस्तान पर आ जाता है या चाहे दोनों मुल्कों में किसी जगह वहाँ बात हो तो इंडिया पे आता है. तो कश्मीर की इनफरादी हैसियत में तो कभी बात, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि उस पर बात हुई है. तो क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं अब कश्मीर के लिए, क्या आप लोग कर सकते हैं कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल है वहाँ, जिस तरह लोगों की ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, उसके लिए यहाँ बैठ के आप लोग जो अमन की बात करते हैं आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे?
देखिए शनाज, कोई इंसान बस वही कर सकता है जो वो कर सकता है, राइट. हम लोग पॉलिसीज नहीं चेंज कर सकते, हम लोग जाके किसी का माइंड नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम जो काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे. और मेरा ख्याल है उसका असर होगा. और मैं भी आपके जैसे एक स्पीकर ने कहा इतनी ज्यादा मायूस नहीं हूँ इस वक्त. हाँ, बहुत ज्यादा मायूसी का समय है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, कठिन वक्त गुजर जाते हैं, हमने बहुत देखे हैं कठिन वक्त पाकिस्तान में, हमने इसी तरह के वक्त पाकिस्तान में देखे हैं, हमारे जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स हुई हैं और उन डिक्टेटरशिप्स के दौरान ही ये टेररिज्म का जो है पाकिस्तान में जो शुरू हो गया, पहले आपने मुजाहिदीन को ट्रेन किया, फिर वो तालिबान बन गए, फिर तालिबान जो है वो अलकायदा बन का हो गया, और बहुत सारे फिर हमारे जो मुख्तलिफ लश्कर फलां और जैश फलां जो इतने ढेर सारे पाकिस्तान में इतने अरसे से धनधनाते फिर रहे हैं, और उन कभी कितने लोगों को, कितने पाकिस्तानी शहरियों को उन्होंने जहां भाग शहीद किया है, मेरे ख्याल 80,000 से ज्यादा जो है जाने हमारी पाकिस्तान में गई हैं। और पाकिस्तान अब जब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह इस चीज को कंटेन कर रही हैं, और ये जाहिर है कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ओवरनाइट चेंज हो जाती है, ये जिस तरह से एक ट्रेन जो है बहुत स्पीड पे जा रही हो, रेलगाड़ी, और किसी ने चेन रोकी, उसकी ब्रेक दबा के रोको उसको, तो बहुत आगे जाके रुकती है वो, फिर उसको मोड़ना, उसका रुख बदलना, उसमें भी बड़ा टाइम लगता है। तो जबकि पाकिस्तान ये रुख बदल रहा है, तो उसी दौरान हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है और वो रुख दूसरी तरफ का बदल रहे हैं। उसमें सिर्फ एक होप उम्मीद की बात ये नजर आती है कि एटलीस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और जैसा कि आपने लक्ष्मी से पूछा कि बीजेपी की वोटरशिप, लीडरशिप और वोटरशिप का क्या है, तो मेरे ख्याल लोगों को नजर आ जाएगा, लोग अहमक नहीं है, लोग बुद्धू नहीं है, सिर्फ ये कि मीडिया एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि एक तरह का सिचुएशन है, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। वहां पे नर्मदा के खिलाफ मेधा पाटकर कितने अरसे हंगर स्ट्राइक पे रही हैं और मीडिया ने उसकी कवरेज नहीं दी, लेकिन जो लोग आसपास हैं उनको तो पता है ना, तो आप लोगों को कितनी देर बुद्धू बनाएंगे, कितनी देर अहमक बनाएंगे,
कहीं ना कहीं तो आवाज पहुंचती है। बिल्कुल, बस 4 मिनट बाकी है, मुख्तदर साहब ये सवाल मैं आपसे करूंगी कि क्या आपको नजर आती है होप मुस्तकबिल के लिए कश्मीरियों के?
देखिए, मेरा तो फोरकास्ट काफी ब्लीक है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वेस्ट बैंक और गाजा का जैसा सिचुएशन है वैसा बन जाएगा। ये जब तक हिंदू नेशनलिस्ट हुकूमत में है वो हिंदुओं को इंकरेज करेंगे कि वो जाए जमीनों पे कब्जा करें, वहां पे सेटलमेंट्स करें, ताकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर वैली में उसको खत्म कर दें। बाद ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएट किए जाएंगे, मिसाल के तौर पे कश्मीरियों को जॉब्स दिए जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट में, जो उनको कश्मीर के बाहर लेके चले जाएंगे, यानी अगर आप कश्मीरी पढ़े लिखे प्रोफेसर वगैरह हैं तो आपको जॉब पंजाब में, हरियाणा में, इधर उधर जॉब्स देंगे। तो ये तो ओपन स्टेटेड पॉलिसीज हैं बीजेपी के, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस भी चलते रहा और रेजिस्टेंस की थोड़ी बहुत वायलेंट नौयत भी अगर रही, तो फिर ये ऑक्यूपेशन की सूरत रहे। वहाँ पे तकरीबन 5 से 7 लाख तक इंडियन आर्मी वहाँ पे है,
और से ज्यादा।
हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जो एजेंडा है हिंदुत्व का, जो एजेंडा है ये बिल्कुल जिस तरह के पाकिस्तान के जमात इस्लामी या इख्वानुल मुस्लिमीन है, इस्लामाइज ये हिंदुआइज कर रहे हैं। बेसिकली इंडियन इस्लाम की शिनाख्त को बदल दे, पिछली हिस्ट्री को फिर से दोबारा लिख दे, ताजमहल को तेजो महलाए बना दे, तो ये एक जो एजेंडा है ये सिक्योरिटी से कश्मीर से अलहदा है, लेकिन इसका असर
कश्मीर पर भी पड़ेगा सूरत हाल पे। मैं डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा।
मैं अर्ज करूंगा कि देखें डिफरेंट मॉडल हैं। पहली बात तो ये कि या तो ये हो कि इनका सिर्फ कश्मीरी एजेंडा हो, और मेरा ख्याल, मैं इससे बहुत शिद्दत से इख्तलाफ करूंगा मुख्तदर साहब की बात से, कि ये जमात इस्लामी और इख्वान मुस्लिमीन को उसके साथ मिला रहे हैं। उनका जो नॉन मुस्लिम या जो दूसरे लैंग उनको खत्म करने का नहीं है, इनका तो बड़ा वाजे एजेंडा ये है कि क्रिश्चियन और मुसलमान और सिख और ये जो इधर सारे के सारे जो ये लोग हैं इनको हिंदू हो जाना चाहिए या इनको निकल जाना चाहिए। तो उनका तो ऐसा वो नहीं है, वो तो उसमें अकलियतों को साथ रखने का है। तो इनका सिर्फ कश्मीर निशाना नहीं है, और ये जो हिंदुत्व का है ये तो क्रिश्चियन के खिलाफ भी और मुसलमानों के भी और लो कास्ट हिंदुओं के भी खिलाफ, ये तो बहुत ही शिद्दत का जो नजरिया है ना, इसके खिलाफ रिएक्शन होगा, नंबर एक। नंबर दो, जो रेजिस्टेंस की बात है, देखिए जहां पहले सितंबर 11 के बाद ये मॉडल हुआ कि वो जो आजादी की तहरीकें या उनको सपोर्ट ना करें, लेकिन अब जो 18 साल के बाद अब अमेरिका ये सबक सीख रहा है कि अगर इंडिजिनस रेजिस्टेंस है तो अफगान तालिबान से बात भी करने पे हैं और मिन्नत परले हो रहे हैं कि हमने वहां से निकलना है, तो ये सूरत भी अब नजर आ रही है। اور تیسری جو ڈائمنشن ہے وہ یہ کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا اس میں کوئی معاملہ جنگی طور پہ آگے بڑھتا ہے جو اس میڈنیس میں ہو سکتا ہے تو وہ بہت ہی خوفناک منظر ہے. تو اس لحاظ سے میرا مجھے امید یہ ہے کہ اگر تو لوکل ریزسٹنس ہوئی واقعی جینون اور اس کے اور یہ بھی خطرہ ہوا دنیا نے بھانپا کہ یہ جو نظریہ ہے یہ واقعی ہٹلر کے جانشین ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو جو دنیا نے ریزالو کیا تھا نیور اگین, تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ثابت کریں.
بہت شکریہ, میں آپ کا ادا کروں گی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب تھے, لکشمی مورتی صاحبہ, عبد المقتدر خان صاحب اور بینا سرور صاحبہ ہمارے آج کے ڈسکشن میں, جو کشمیر میں انفارمیشن کو بلاک کیے جانے کے بارے میں تھا, اس کے اثرات کے بارے میں. تو اس کے ساتھ ہی سامعین اجازت دیجیے شہناز عزیز کو پروگرام ختم کرنے کی. ہمارے پروڈیوسر انجم ہیرل گل تھے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر کیمرون منٹر کا کہنا ہے کہ بھارت میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان شاید واقعی دونوں ملکوں کے درمیان گفتگو چاہتے ہیں. وہ وائس آف امریکہ کے نمائندے امان اظہر سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے. آئیے اس کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن واقعات نے ہندوستانی حکومت کے رد عمل کو متاثر کیا ہے ان میں سب سے پہلے تو مسٹر مودی کا دوبارہ انتخاب ہے, جس سے ان کی اپنی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے, اور پھر کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ تعلق کا سوال ہے اور وہاں کی آئینی حیثیت کا اثر نو جائزہ لینے کے فیصلے پر عمل درآمد. دوسرا ممکن ہے کہ یہ اس سال کے شروع میں ہونے والے دہشت گرد حملے کا نتیجہ ہو اور ہندوستانی رہنماؤں میں کسی طرح یہ احساس پیدا ہوا ہو کہ اس جمود کو برقرار رکھنا غیر یقینی ہے. اگر واقعی مسٹر مودی کا ہدف یہ ہے کہ وہ واقعتاً ہندوستان سے کشمیر کے تعلق میں تبدیلی آئے, تو پھر میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ان کا اسٹریٹجک نقطۂ نظر کیا ہے. کشمیر کا ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی طرح ریاست بننے سے کیا ہوگا؟ بی جے پی حکومت اس فیصلے سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کچھ تند و تیز تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ شاید اس فیصلے سے ہندو مفادات کو مسلم مفادات کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے. لہٰذا اس مرحلے پر یہ ایک انتہائی خطرناک سوال ہے کہ ہندوستان کس سمت میں جا رہا ہے, اور شاید ایسا حالات و واقعات کے سبب ہوا ہے, لیکن مجھے یہ واضح نہیں ہے کہ ہندوستانی حکومت اس حکمت عملی کے نتیجے میں کیا دیکھنا چاہتی ہے اور کشمیر کا کیا مستقبل وہ دیکھنا چاہتے ہیں.
At this point, trying to figure out where India is going.
Does this posturing also speak of India's
کیا کشمیر کے فیصلے سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت خطے میں بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے, خاص طور پر ایسے میں جب بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے؟
مجھے یہ بات زیادہ حقیقت پسندانہ نہیں لگتی. خود کو خطے کی بڑی طاقت کی حیثیت سے دیکھنے سے کہیں زیادہ مجھے یہ ایک ایسے مسئلے کے بارے میں سوال کے طور پر نظر آتا ہے جس کا حل سالوں سے نہیں نکلا, جو ہندوستان کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر ایک مشکل مسئلہ رہا ہے, اور چین اور پاکستان کے لیے بھی, جس کے باعث وہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ہندوستان خطے میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے جو 1947 کے بعد سے حل طلب ہے اور ہر طرح کی کشیدگی کا سبب رہا ہے. لہٰذا میں اسے ہندوستان کی جانب سے کشمیر کے حل کی کوشش کے طور پر دیکھتا ہوں, جسے وہ ہندوستان کا جائز حصہ سمجھتا ہے.
پاکستان
کے وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کی کوششوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. تو کیا آپ کے خیال میں بات نہ کرنے سے دونوں ممالک کچھ حاصل کر پائیں گے؟ کیا یہ نیا معمول ہے؟
یہ سن کر بہت افسوس ہوا. میں واقعتاً بہت متاثر ہوا تھا کہ عمران خان نے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی ہندوستان کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, لیکن ہندوستانی حکومت یا ہندوستانی قیادت میں بہت سو نے اسے ایسا نہیں سمجھا, اور ان کا طویل مدتی مطالبہ ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروہوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور دہشت گردی کی پشت پناہی کو روکنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے. لیکن ان کا کہنا تھا کہ عمران خان گفتگو کے لیے ہاتھ تو بڑھا رہے ہیں, وہ واقعتاً جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی جانب سے لشکر طیبہ جیسے گروپوں پر لگام ڈالنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سال پہلے عمران خان کم از کم گفتگو شروع کرنا چاہتے تھے. بطور سفارتکار میں ہمیشہ بات چیت کا حمایتی رہا ہوں. لگتا ہے کہ مسٹر مودی شاید ان کی جانب ہاتھ واپس بڑھائیں, اور ایسا وقت ضرور آیا تھا جب یہ موقع موجود بھی تھا. لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں جو افسوسناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے بات چیت شروع کرنے کی کوششیں ناکام رہی ہیں, اور اب دونوں جانب سے لب و لہجہ سخت ہو گیا ہے. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ عمران خان کی جانب سے حالیہ بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ بات چیت کا زیادہ امکان نہیں ہے. اور کچھ مہینے قبل جب میں عمران خان سے ملا تھا تو وہ بھارت اور پاکستان میں بہت سو کی نسبت زیادہ پر امید تھے کہ وہ گفتگو شروع کر پائیں گے, اور اس حوالے سے میں انہیں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بات چیت شروع کرنے کی کوشش بھی کی, چاہے بھارت کی جانب سے ایسا سمجھا نہیں گیا.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.